भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति स्वरूप ससमर्थ स्वरूप यज्ञ के आधार स्तंभ ज्ञानी और योगी जीवन में हमेशा सुखद अनुभूतियों में रहने वाले ऐसे परम आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी का हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। इस सीजन की जो भी अव्यक्तवाणियां चली, इस सीजन की जो मुरलियां चली बाबा की, उसमें फरिश्ता स्वरूप पर बहुत बाबा ने अटेंशन खिंचवाया और 2025 में हमें धुन लगी रहनी चाहिए, बस फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनना है, क्योंकि इस अभ्यास के सिवाय आगे आने वाले पेपर को अचल अडोल अवस्था में रहकर पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाई जी ने बहुत अच्छा विषय चुना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, और इसको बहुत गहनता से समझेंगे, सीरियसली समझेंगे और अभ्यास भी करेंगे सारे साल भर। ये भाई जी को हम क्लास सुनने के बाद एक वचन देंगे। अच्छा, भाई जी का परिचय इस तरह से है, 1937 के स्थापना के आदि समय से आदिदेव ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा के संग संग आपने भी अपना जीवन यज्ञ के फाउंडेशन के समय यज्ञ में बलिहार किया, संपूर्ण बलिहारी दे दी। आप लौकिक पढ़ाई में सीए हुए और इसी के कारण बाबा की यज्ञ सेवा में ये पढ़ाई आपकी बहुत काम में आई और सेवाएं दे रही है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आप फाइनेंस मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान समय ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जनरल सेक्रेटरी पॉलिटिकल विंग के चेयरपर्सन हैं। आपकी विशेषता यह है कि आप बहुत गंभीर और सूक्ष्म गहन राज से भरे हुए बाबा के महावाक्य अर्थात पॉइंट्स को बड़े रमणीकता से और सरलता से समझाकर पुरुषार्थ को बड़ा सरल और सहज कर देते हैं। ऐसे आदरणीय भाई जी से हम सभी नम्र निवेदन करते हैं कि आप हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता कैसे बने इस पर लाभान्वित करेंगे। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी,
ओम शांति। प्यारे बाबा के अति प्यारे डायमंड आत्मा स्वरूप बच्चे, आज हम बाबा के इस डायमंड हॉल में इकट्ठे हुए हैं और वो भी महाराष्ट्र जोन के बाबा के बच्चे। तो जिस चीज के साथ महा लग जाए तो क्या कुछ होता है आप जानते हैं। कोई आत्मा कुछ अच्छा कर ले तो उसको महाआत्मा कहने लग जाते हैं, कोई बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाए तो उसको महाभारत कहने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सचमुच राष्ट्र तो बहुत हैं पर सारे विश्व में महाराष्ट्र एक ही है और प्यारे बाबा के ब्राह्मण परिवार में महाराष्ट्र जोन भी एक ही है। कितना बड़ा है, इसलिए आज हम सब बाबा ने हमको डायमंड अवसर दिया है कि यहाँ इकट्ठे हों बाबा के इस जिसको कहते हैं एरोड्रोम, जहाँ से आत्माएं परमधाम में सूक्ष्म लोक में जा सकती हैं, हेडक्वार्टर है। तो आज हम एक बहुत ही अपने से संबंधित बात, फरिश्ता रूप, उसके बारे में हम मंथन करते हैं। पहली बात तो कोई फरिश्ता बन ही नहीं सकता जब तक पहले वो ब्राह्मण ना बने। तो बाबा ने हमको फरिश्ता बनने की जो पहली क्वालिफिकेशन है वो ब्राह्मण बना दिया। और ब्राह्मण कोई कम बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण तो देवताओं से भी उत्तम है। देवता से पहले ब्राह्मण की वंदना करते हैं। अब ब्राह्मण बनने के लिए हमको बाबा लौकिक से अलौकिक बनाते हैं, और सब दुनिया वाले लौकिक हैं, तो लौकिक भी कौन से युग में है, कलयुग में लौकिक हैं। तो एक तरफ सारी दुनिया वाले कलयुग में लौकिक, और बाबा ने कलयुग में लौकिक का आज भी क्या बताया मुरली में, कि कलयुग में लौकिक किसकी पालना लेते हैं। कलयुग के सभी लौकिक रावण की पालना लेते हैं, इसीलिए वो दुखी हैं। और कलयुग एक भी कलयुग में सुखी नहीं है, क्योंकि एक भी कलयुग में रावण की पालना, झूठी पालना से बाहर नहीं है, इसलिए विकारी है। जन्म ही विकार से होता है। तो आज बाबा ने हमको सुबह बहुत ही जिसको कहते हैं ना, एक होता है गुह्य, एक होता है गुह्यतम, तो गुह्यतम बात बताई है कि जैसे रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं, ऐसे ही कलयुग है तो सतयुग नहीं, सतयुग है तो कलयुग नहीं, ऐसे ही सुख की दुनिया है तो दुख की दुनिया नहीं, और दुख की दुनिया है तो सुख की दुनिया नहीं। बोलने में तो बहुत सहज लगता है, लेकिन अब जब ब्राह्मण एक दूसरे से बात करते हैं तो पूछा जाए कि क्या सतयुग में किसी को भी किसी प्रकार का भी दुख हो सकता है। अगर आप सब ब्राह्मणों से पूछा जाए कि क्या सतयुग में किसी को भी, पशुओं तक को भी किसी प्रकार का दुख हो सकता है, तो जो कहेंगे नहीं वो हाथ उठाओ। कईयों ने नहीं उठाया, या तो ध्यान और तरफ होगा या सुना नहीं होगा। फिर से बोलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, खुशी की बात है। जिस दुनिया में हम जा रहे हैं, भले वहां राजा भी होंगे, प्रजा भी होगी, फर्क तो होगा, लेकिन सतयुग में, स्वर्ग में किसी को भी किसी प्रकार का अगर दुख नहीं हो सकता तो सब मानते हैं, तो हाथ उठाओ। हाँ, अब कुछ बात बनती है। कईयों को ठंड के कारण शॉल में हाथ रखे हुए हैं, शॉल में ही उठा रहे होंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, अब इस बात को जरा दूसरी तरफ ले जाते हैं। अगर सतयुग में किसी को कोई दुख नहीं हो सकता तो क्या कलयुग में, क्या कलयुग में किसी को किसी प्रकार का भी सुख हो सकता है? अब सोच कर हाथ उठाना। अच्छी तरह अगर दिल कहता है नहीं तो वो भी हाथ उठाइए। क्यों, सेब खाने में सुख नहीं है? सेब खाने में क्या तकलीफ है? कलयुग में सेब तो होता है ना। तो फिर इस बात को कैसे पक्का जोड़ा जाए कि अगर सतयुग में दुख नहीं तो कलयुग में सुख नहीं? तो ये बाबा ने कहा हुआ है, ड्रामा ने भी कहा हुआ है, हम मुरलियों में भी सुनते हैं। जब तक ये बात अच्छी तरह हमारे समझ में नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद भी हम क्या सोचते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, थोड़ा सैर करना तो जरूरी है, हेल्थ अच्छी रह जाए तो फिर थोड़ा सा भोजन का भी ध्यान अच्छा रखना जरूरी, अच्छा अच्छा भोजन मिलना चाहिए। बाबा कहता है कि तुम्हारे पाप और विकर्म पिछले बहुत हैं, वो योग बल से विनाश होंगे। और हम कहते हैं कि नहीं, सेब खाने से विनाश होंगे, सैर करने से विनाश होंगे, क्या ख्याल है? योग बल से बहुत थोड़े टाइम में विकर्म विनाश हो सकते हैं, बाधाएं दूर हो सकती हैं, आयु लंबी हो सकती है। या हम संसारिक तरीका करें जो दुनिया वाले भी करते हैं, पर नहीं, जिसको सेब खाना चाहिए उसके पास उसके खरीदने के पैसे नहीं हैं, और जिसको खरीदने के पैसे हैं वो इस प्रकार के सेब या कुछ भी खा ले उसका हेल्थ ठीक होना नहीं है। परंतु हमारे लिए बाबा ने एक और खास खुशी की बात बताई है, वो क्या है कि हम कलयुग और सतयुग की बात करते हैं, ठीक है, पर हम सब ब्राह्मण क्या कलयुग में हैं? ये बताओ, हम सब ब्राह्मण कलयुगी हैं या जन्म लेते ही संगम युगी बन गए? तो ये नोट करने की बात है कि कलयुग में तो कोई सुखी नहीं रह सकता, परंतु संगम में क्या ख्याल है? संगम में हम अति इंद्रिय सुख को पा सकते हैं जो देवताओं को भी नहीं होता। इसलिए ब्राह्मणों को देवताओं से भी ऊंचा दिखाया जाता है, दुख में सुख। इसलिए अब हम पर वो बात लागू नहीं होती कि कलयुग में कोई भी सुखी नहीं है, क्योंकि हम तो संगम युगी हैं। अच्छा, अब संगम युग में हमें क्या होना चाहिए? बाबा ने हमें अलौकिक जन्म दिया तो कलयुग से तो हम बाहर आ गए। जैसे आप परम धाम में चले जाएं तो शांति ही शांति है, पक्का, वहां न सुख है न दुख है। इसी प्रकार से आप संगम पर आ गए तो आप कलयुग से तो बाहर आ गए, तो कलयुग के जो दुख हैं वो संगम वालों को होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बोलो, कलयुग के दुख संगम वालों पे लागू होते हैं या नहीं? जो नहीं कहते हैं हाथ उठाओ, क्योंकि हाथ इसलिए उठवा रहे हैं जरा पक्का रहे अपने आप को। ठीक, अब ये बताओ कि संगम पर हम हैं, अलौकिक बन गए, स्वयं भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान किसी के पास नहीं है, हम जानते हैं, उस ज्ञान का नशा ही और है। एक मुरली सुन लो तो कितना नशा चढ़ जाता है, कम से कम 12-1 बजे तक तो रहता है। अच्छा, अभी 12 बजने वाले हैं, अभी तो है। अच्छा, अब फिर भी जहां अति इंद्रिय सुख होना चाहिए वहां कभी कभी जल्दी से ठीक हो जाता है, पर कभी कभी जैसे तंबू लगाते हैं, हवा आती है, थोड़ा हिलता है, फिर टिक जाता है, वो ठीक है, पर कभी कभी भी क्यों? कलयुग वाली हवा, खराब हवा हमारे पास आके असर कर जाती, ये है सवाल। कोई कारण बताइए, क्या कारण हो सकता है? रोज बाबा हमको ज्ञान देते हैं, रोज किसी को, मरीज को रोज इंजेक्शन लगाए और वो भी सिविल सर्जन लगाए, फिर भी मरीज कहे कि आज तो मैं थोड़ा, मेरी टेम्परेचर बढ़ गई, ठीक तो नहीं है। और आज बाबा ने क्या कहा कि मुरली को अच्छी तरह से जरूर पढ़ना चाहिए, मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए और मुरली की कोई भी पॉइंट मिस नहीं करनी चाहिए और मुरली को साधारण नहीं पढ़ना चाहिए। अब आप देखिए, स्वयं आपका अनुभव है कि जिस दिन आप मुरली खूब उमंग सा से, खूब खुशी से पढ़ते हैं तो एक एक शब्द में कुछ और शक्ति मिलती है और वही मुरली आप पढ़ते हैं, पूरी पढ़ देते हैं, लेकिन उस दिन आपका ध्यान थोड़ा सा दूसरी तरफ है तो फिर क्या होता है, जैसे ठंडी चाय पीता है कोई, फर्क पड़ गया। और एक ही दिन में भी आप मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, एक पेज आपने बहुत अटेंशन से सुना, आपको हर बात समझ आ जाएगी, दूसरा पेज सुनने के समय आपको ध्यान आया कि मेरा तो पर्स रह गया वहां है, अच्छा, या मेरी बुकिंग कंफर्म नहीं हुई, तो मुरली आप सुन रहे हैं, बाकी की मुरली कानों से सुनेंगे लेकिन अंदर कम जाएगी। इसलिए ना केवल मुरली बाबा कहते हैं मिस नहीं करनी, लेकिन अगर हमने अपने मन से मुरली के दो लाइन भी मिस कर लिए, सिर्फ दो लाइन, हमारा पढ़ाने वाला स्वयं ऑलमाइटी सतगुरु है और वो कहते हैं 5-6 दिन पहले मुरली आई थी कि मुझे साधारण नहीं समझना। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं मैं जो हूं जिस तरह का हूं वैसा मुझे याद करना। हम कहते हैं बाबा मेरा आलस दूर कर दो, बाबा तो ऑलमाइटी है। अब बाबा आलस दूर करने ही वाला होता है तो हमें संशय आ जाता है कि नहीं नहीं मेरा आलस तो बहुत पुराना है, थोड़ा सा बाबा आज दूर करेगा बाकी कल करेगा। ये क्या हुआ, साधारण में ले आए। तो बाबा कहता है बनना है विशेष आत्मा, माला के दाने, और कर्म करना है साधारण, तो जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो बाबा भी सर्वशक्तिवान होते हुए भी बिल्कुल हमारे को सफलता दिलाने वाला था, पर हमने अपने संशय करके अपना कनेक्शन ढीला कर लिया। इसलिए जैसे कोई डॉक्टर ICU के पेशेंट को जो कहता है वो करता है, कहता है सांस रोक लो, वैसे सांस रोक लेता है कि निकल भी जाए मैंने चलानी नहीं, उस वक्त कष्ट होता है। ये करो, हिलना नहीं, वो बिल्कुल नहीं हिलेगा, सारी दुनिया हिल जाए। परंतु बाबा की मुरली पढ़ते समय आपके ख्याल में बाबा कोई भी एक एक्स्ट्रा शब्द बोलता है? भगवान जो है बच्चों को सुनाने आता है वो तो गॉड फादर है, तो उसके मुरली में कोई एक्स्ट्रा शब्द होता है जो होना नहीं चाहिए? नहीं। अच्छा, फिर हमको फरिश्ता बनाने के लिए, भगवान तो भगवान है। जब व्यक्त वाणी चलाते थे तो नॉर्मल आवाज में चलाते थे, अब भगवान ने
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
अब देखिए कि किसी भी नाटक में, किसी भी ड्रामा में, किसी भी खेल में, किसी भी बिजनेस में ये चांस तो होता ही है, जीतने का, सफल होने का, या कम सफल होने का, या असफल होने का। किसी पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है। अब देखिए क्या होता है। बाबा ने हमें दर्जनों प्रकार के ऐसे अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने पास जो बाबा ने हमें बहुत अमूल्य ज्ञान दिया है, अमूल्य विधियां बताई हैं उसको बचाने का, उसको किसी के ना लूटने के बहुत तरीके बताए हैं। अब उन सब तरीकों से गुजर कर भी अगर रावण जो है अटैक कर दे तो बाबा कहते हैं खेल समझो, सांप और सीढ़ी वाला लूडो होता है, उसमें आप देखेंगे आप सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, कहीं एक सांप आ जाए तो बिल्कुल टॉप से भी नीचे ले आता। तो उस खेल को समझना है, उसका मजा भी लेना है और कोशिश ये करना है कि ड्रामा के अनुसार भी अगर कोई हमारे ऊपर व्याधि आनी हो तो उसको भी बाबा हमें बचा लेगा, ना कि बाबा के बचाव में रावण आके घुस जाए। अब मैं आपको कुछ साधारण बातें बताता हूं। बाबा ने हमको क्या कहा, सिर्फ कहा है अपने को आत्मा समझो, ऑर्डिनरी आत्मा नहीं संगम युग की आत्मा समझो, अपने जीवन को अलौकिक समझो। मैंने जो तुम्हें खाने पीने की बातें बताई हुई हैं सारी शुद्ध हैं, दुनिया वाले अशुद्ध अच्छे भोजन को से भी बीमार हो जाते हैं। अच्छा, मैंने जो तुम्हें बुद्धि से सोचने की संकल्प जो मेन चीज है उसका भी बताया हुआ है, उसी को पकड़ लो कि संकल्प मेरा कैसा होना चाहिए और उस संकल्प को उसी तरह का बनाने का अंदर अंदर अभ्यास करते रहो। फार्मूला तो बड़ा सहज है और बाबा कहता है इतना सहज है कि नाम ही इसका सहज योग रखा हुआ है। और कोई चीज जब तक सहज ना हो तो सदा नहीं हो सकती। आप देख लो किसी चीज को आप कोशिश करोगे बहुत अच्छी टेम्परेरी रहेगी, लेकिन अगर सहज है तो आपकी नेचुरल हो सकती है। भक्ति में भी हम लोग उपवास करते थे, पवित्र भी रहते थे, खाना भी करते थे, कई दिन बोलना भी कम करते थे, लेकिन वो टेम्परेरी एक दिन का, फिर सोचते थे बस हो गया हमारा काम पूरा। बाबा ने उसको इतना सहज किया है कि कुछ भी नहीं है। अब दुश्मन को भी पता है। अब बाबा ने एक तो कहा पढ़ाई ठीक रोज पढ़ो, कोई बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं है। आज का आठवीं क्लास का बच्चा कितनी पुस्तकें लेकर चलता है, हमारे तो सब्जेक्ट ही थोड़े हैं, कोई किताब भी ना रखो। फिर भी उस ईश्वरीय पढ़ाई को हम साधारण समझ लेते हैं, उस पढ़ाई के साथ और कई पढ़ाइयां मिक्स कर लेते हैं। अब बच्चा पढ़ता है तो देखता है कि मेरा एक एक अक्षर ठीक है, मेरे दिमाग में गया, यहाँ किसी को कहो कविता सुनाओ तो ठीक ठीक सुनाता है। हमने मोबाइल रखे हुए हैं। अच्छा, एक तो ईश्वरी पढ़ाई इतनी रॉयल बढ़िया, और उसके साथ फिर जिसको कहते हैं ना मसालेदार मोबाइल, उसमें फोटो भी आते हैं, उसमें और चीजें आती हैं। अब आप सोचो कि एक बारी हमने मुरली पढ़ी, उसको हमने मंथन करना है, और हमने तीन बारी भी मोबाइल देख लिया तो मुरली तो गायब हो जाएगी। पूछोगे आज का वरदान क्या था, वरदान? अच्छा, मैं देख के बताता हूँ, अंदर तो गया ही नहीं। अच्छा, तो पढ़ाई में ये हो गया। अब आ जाओ योग में। भगवान कहता है मेरी श्रीमत पे चलो, हमें से कौन कहेगा हम श्रीमत में नहीं चलते। बाबा तेरे लिए तो हमने श्रीमत फॉलो की हुई है, हम बाजार का खाना नहीं खाते, किसी के घर नहीं जाते, श्रीमत में तो चलते हैं। अब बाबा ने कहा बच्चा सारी दुनिया की आत्माओं में से मैंने तुमको चुना, और जो कुछ तुम्हारे लिए मैंने श्रीमत दी वो बेस्ट है, क्योंकि मैं भगवान हूं। अच्छा, हम उसमें अपनी मन मत, मोबाइल की मत, पर मत, अपने मित्रों की मत और शास्त्रों वास्त्रों की कई मतें मिक्स कर लेंगे तो श्रीमत रहेगी। अब भगवान ने सिंपल कहा कि बच्चे अमृत वेले आ जाया करो, मैं अपने आप, तुमको कहने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी सब कमी कमजोरी दूर करके तुम्हें आगे ले दिन के लिए तैयार कर दूंगा, तुम्हारी बैटरी चार्ज कर दूंगा। सिंपल बात है। अब ये बताओ कि हम और कामों को ध्यान देते हैं, अमृत वेले को क्यों नहीं देते? एक किसी को कह दे अमृत वेले तुझे राशन डबल मिल जाएगा या एक नई कार मिल जाएगी तो रात को लाइन में लग जाएंगे। अच्छा, और भगवान कह रहा है कि देखो और कोई सब सोए हुए होंगे, तुम चुपचे से आ जाना, मैं तुम्हारी 21 जन्म की प्रारब्ध का कूपन तुम्हें दे दूंगा। नहीं, और उसी वक्त आप गौर से देखो, माया को पता है कि बहुत बड़े अधिकारी हैं, इनका कूपन छीन लो, वो क्या करते हैं, उसी वक्त सारा दिन ठीक रहेंगे, ऐसे लगेगा जैसे मेरी सारी हड्डियां टूट गई हैं, मेरे अंदर हिलने की भी हिम्मत नहीं है, और बस फिर माया और काम करेगी। रात को तुम देर से सोए थे, हैं? अच्छा, आज तुम्हें ये काम करना है, ये काम करना है, इसलिए थोड़ा आराम कर लो बस, फिर और अगर आप और होशियार हैं तो और चलाकी करेगी। माया कहेगी, बाबा ने कब कहा बैठ के योग लगाओ, लेट के लगाओ ना। अच्छा है, फंस गए कि हाँ भाई ये तो ठीक है, योग ही लगाना है और शरीर को भी जरा आराम मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि उस वक्त आंख खुलती है जब अमृत वेला पूरा हो जाता है, तो माया आपका लूट के ले गई। अच्छा, और अगर आदत पड़ गई, वैसे भट्टी करने आएंगे, देखो एक और भी वंडरफुल बात है, भाई भट्टी करने की क्या जरूरत है, नहीं जरा हमारा योग अच्छा लगना चाहिए। प्रश्न भी पूछेंगे, ये बताइए मेरा योग कैसे अच्छा लगे। अच्छा वाह, और सिंपल बात जो भगवान ने कही हुई है कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप किसी इतनी बड़ी प्राप्ति और ऑर्डर देने वाला कौन है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो पढ़ाई को भी ढीला कर दिया, अमृत वेले को भी ढीला कर दिया, और जिस चीज को बहुत बचा के रखना चाहिए, अपने पर्स को हम बचा के रखेंगे, रेलवे टिकट को बचा के रखेंगे, लेकिन उसमें हम खुला छोड़ देते हैं, माया लूट के ले जाए। अगर आप अमृत वेले सो जाओ, लेट जाओ कि अच्छा आराम करना है, केवल एक मक्खी आ जाए आपके कमरे में, तो देखो आप सो नहीं पाओगे। पहले कहोगे मक्खी को निकालना है, इतने एक्टिव हो जाओगे मक्खी मुझे परेशान कर रही है। अब सोच लो कि हमारा उसमें आलस्य है, अलबेलापन है, लापरवाही है, या हम सच्चे स्टूडेंट हैं। अच्छा आगे चलो, बाबा कहता हो तो तुम संगम पर संगम का मतलब क्या है कि कलयुगियों के साथ भी तुमको मिक्स होना पड़ता है, कलयुगी चीजें खानी पड़ती है। अच्छा घर में भी भोजन बना लो, अनाज तो बाहर से ही आएगा, घर में ही फल ले आओ, केला तो बाहर से ही आएगा, सेब तो बाहर से ही आएगा। अब किसी को कहे कि तेरे को भोजन तो करना है, लेकिन ये बहुत मैली खराब चीज में लिपटा हुआ फल है, इसको खा लो, मजबूरी है, तो आप उसको धुलाई करेंगे, अच्छी तरह गर्म पानी से धोएंगे। बाबा ने कहा है मैंने तुमको एक खास जादू का फार्मूला दिया, कुछ भी बाहर की चीज आ जाए योग लगा लो। देखो है छोटी सी बात, योग लगा के हम 63 जन्मों के बहुत दुख देने वाले पाप जो कभी खत्म ही नहीं होने थे उसको हम खत्म करते हैं, और हमारे लिए बाबा ड्रामा भी बंद कर देता है। अगर ड्रामा चलता रहे तो आप सजा भोगते रहेंगे और ऐसे कर्म किए हैं कि और पाप भी करते रहेंगे, तो पाप बढ़ते रहेंगे, सजा भोगते रहेंगे, हजारों साल चले जाओ आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो बच्चों की खातर बाबा ने कहा ठीक है ड्रामा बंद, तो हमें ही पता है ड्रामा बंद है। और उसने समय के लिए भी बाबा ने कह दिया, जैसे कोरोना में कहते थे मास्क पहनो, तो कितना डर के मास्क पहनते थे, अपने चचा के आगे भी मास्क पहनते थे, उससे कहते चाचा जी आप भी पहन लो तब बात करूंगा, छोटे से कोरोना के लिए। और ये जो कोरोना फैला हुआ है कि खाने पीने की चीजों में भी कोरोना, हवा में भी कोरोना, पानी में भी कोरोना, तो उसको बाबा ने फॉर्मूला बताया है कि जैसे कोई खाने को अग्नि पे पका लेता है तो खाने के जरासीम खत्म हो जाते हैं, तुम्हारे पास तो योग अग्नि है जिससे हर चीज को भस्म कर सकते हो। कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा मुझे ऐसी ताकत मिल जाए मैं किसी को भी भस्म कर दूं। और शिव मशहूर है कि शिव हर एक को वरदान दे देते थे, पर आपको पता है एक भस्मासुर था, उसने सोचा मैं शिव को ही भस्म कर डालूं, उसने भी वरदान ले लिया लेकिन खुद ही भस्म हो गया। तो हम भी ऐसे ही हैं, गौर से देखा गए उसकी तो कहानी है, परंतु हमें बाबा ने इतनी शक्ति दे रखी है अशुद्ध को शुद्ध करने की। बाबा कहता बोलो भी ना, कोई अज्ञानी आपके पास आ जाता है, कोई खराब व्यक्ति आ जाता है, आप अपनी दृष्टि से ही उसके अंदर से पाप को, व्यक्ति को हम भस्म नहीं करते, हम उसके पाप को भस्म करते हैं। तो शास्त्रों में लिख दिया व्यक्ति को ही मार डालो, कौरवों को मार डालो, मार डालोगे उसकी आत्मा तो नहीं मरेगी। तो कहा जाता है हेयर द सिन नॉट द सिनर, तो हमारा काम पापों को भस्म करने का है। हम क्या करते हैं, दूसरे को देखकर उसकी देश उससे ही नफरत करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा केवल कुछ नहीं करो, कोई भट्टी ना करो, कोई खास एफर्ट ना करो, केवल नॉर्मल, क्योंकि एफर्ट करने में आप थोड़ी देर कर सकते हैं। आप माउंट आबू आए, कितने दिन आप क्लासेस कर सकते हैं, कितने दिन आप बाबा से मिल सकते हैं, थोड़ी देर कोई कश्मीर चला जाए ठंडी हवा में, शहर में आएगा तो और गर्मी लगेगी, इसलिए नॉर्मल बनाना है। तो नॉर्मल यही होता है, चलना नॉर्मल है, दौड़ना नॉर्मल नहीं है, आप कितनी देर दौड़ सकते हैं। इसलिए भगवान कहता है मैंने तो आपको सिंपल कहा, सोना कैसे है, अच्छा सारा दिन में कोई गलतियां हो गई, क्योंकि माया की दुनिया है, कपड़े के ऊपर दाग तो लगेगा ही, धूल तो लगेगी। तो बाबा ने कहा हुआ रात को सोने से 15 मिनट पहले, किसी को कह दो 15 मिनट पहले तू सोने से ये काम कर ले तो तेरा बचाव हो जाएगा, ये मंत्र जप ले। भक्ति में हम करते रहे हैं लेकिन सोने से पहले कुछ ना करो। हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ता है, उसमें मिस भी होता है। 15 मिनट अपने सारे दिन की, सुबह से लेकर, अच्छा किया नहीं अच्छा हुआ कहीं मिस हो गया, सारे को बाबा को दे दो। बाबा कहता आपका यही खाता खत्म, आपको धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। क्या हम ये भी नहीं कर सकते, नींद न आने के कारण गोलियां खाते हैं, नींद न आने के कारण किताबें पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, लेकिन भगवान कहता है कि 15 मिनट खाली अपने आज की दिनचर्या मेरे को दे दो। जैसे कोई दुकानदार का सेल्समैन होता है अपने मालिक को कह देता है कि जी वहां गया था पैसे मिले, वहां गया नहीं मिले छुट्टी, हम वो भी नहीं करते। अमृत वेले उठ के गुड मॉर्निंग नहीं करते, रात को हम अपना पोता मेल नहीं देते, अमृत वेले की क्लास मिस कर देते हैं, मुरली को ढीला डाला सुनते हैं। बाबा ने एक और बात कही है, हाथ उठाओ कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा, बाबा ने कहा है तो सब उठा देते हैं, कौन शर्म का मारा कहेगा कि मैंने नहीं बनना। अच्छा फिर बाबा कहता है त्रेता युग ही हाथ नहीं उठाना, त्रेता युग ही हाथ पता ना कैसे उठाया जाता है, त्रेता युग ही हाथ, हाथ तो उठाते हैं लेकिन बाबा ने कहा नर से नारायण बनने का गायन है, नर से श्री राम बनने का तो गायन नहीं है कि आप तीर कमान लेकर सिंहासन पर बैठ जाओ इतना डरते हो तो। इसलिए हाथ उठाते हैं, पता है कितने लक्ष्मी नारायण बनने हैं। आज बाबा ने और भी कह दिया चलो मैं लड़ियां लगा दूंगा, लड़ियों वाले हार होते हैं, आप विजय प्राप्त करते जाओ मैं बढ़ाता जाऊंगा, लेकिन उसके लिए दैवी गुण भी चाहिए। दैवी गुण के अलावा इतनों की ज्ञान का मैसेज दिया हुआ होना चाहिए, प्रजा बनेगी। उसके लिए जो बाबा की दिनचर्या है, बाबा ने तो यहां तक कह दिया कि आपका हर संकल्प हर सेकंड अगर सफल होगा, हर चीज हर खजाना आपके पास, ज्ञान है, आप योग लगाते हैं, सेवा करते हैं, पूरा सफल होगा तो पूरी प्राप्ति होगी। अब इसमें तो हर वक्त का ध्यान रखना पड़े ना, तो हम दुनिया से अलग हो गए, हम तो गॉडली स्टूडेंट हैं, गॉडली बिल्ट्री हैं, संगम योगी हैं, अलौकिक हैं। फिर हमारे लिए भगवान ने फरिश्ता बनाने के लिए एक और काम किया कि एक पूरा लोक जो सारे कल्प में होता ही नहीं, वो संगम युग पर भगवान हमारे लिए एक लोक तैयार करते हैं। इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर तैयार करते हैं जितने आपके सारे रिट्रीट सेंटर मिला लो उससे भी बड़ा, और वो सभी हर वक्त खुला रहता है, हर कोई उसमें जा सकता है। ये भी नहीं कि मुझे अगली सीट चाहिए या पिछली सीट चाहिए। और फिर उस रिट्रीट सेंटर में बाबा खुद मौजूद रहता है, वो है सूक्ष्म लोक। फरिश्ते कहाँ रहते हैं? फरिश्तों का लोक कौन सा है भाई? क्यों फरिश्तों का लोक महाराष्ट्र का कोई शहर है या कोई और जगह है या सूक्ष्म लोक है? क्या फरिश्ते परम धाम में रहते हैं? एक बार फिर हाथ उठवाना पड़ेगा ताकि जरा अच्छा। क्या फरिश्ते परम धाम में रहते हैं? जो कहते हैं नहीं रहते, हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है। क्या रावण परम धाम में रहता है? जो नहीं कहता हाथ उठाओ। ठीक है। क्या फरिश्ते मृत्यु लोक में रहते हैं? जो कहते हैं नहीं रहते, हाथ उठाओ। तो फरिश्ते कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने अपने बच्चों के लिए, ब्राह्मणों के लिए खास फरिश्ता लोक बनाया। ये लोक सतयुग में भी नहीं होता, जो बात में नीचे आती है ये लोग होता ही नहीं। खास बनाया है संगम पर कि मेरे बच्चे फरिश्ते रूप का अनुभव करें। जितना देर, क्योंकि जिस चीज का अनुभव करोगे वो आप प्रैक्टिकल में ला सकते हो। पहले गोली चलाने का अनुभव करते हैं फिर आर्मी में जाते हैं, तो फरिश्ते लोक का अनुभव करने के लिए पक्का वो तो है फरिश्ता लोक। और उसमें कोई सीट की रिजर्वेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, जिसको फरिश्ता लोक का अनुभव करना हो जा सकता है। और ब्रह्मा बाबा खास अपने बच्चों के लिए, कई कहते हैं हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, हमें ब्रह्मा बाबा की बात सुनाओ, ब्रह्मा बाबा की बातें सुनाओ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं तो अपनी बातें मुरलियों के द्वारा रोज ही सुनाता हूँ। आज भी कहा है कि दया कृपा आशीर्वाद आदि जो है ये मैं देता ही रहता हूँ, पढ़ाई के द्वारा देता हूँ। तो हर मुरली में उसका जो ब्रह्मा बाबा ने सिखाया है, और पिछला पूछोगे तो वो तो कोई कहे दादाजी ने दादी जी को क्या कहा था अब सुनाओ, परंतु आज अब तक ब्रह्मा बाबा हमारी खातर, जैसे क्रिश्चियन लोग कहते क्राइस्ट क्रिश्चियनों की खातर क्रॉस पे चढ़ गया, वो तो चढ़ा या नहीं चढ़ा, परंतु ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों की खातर अपने संगम युग में साकार बच्चों को देखने का भी छोड़कर 18 जनवरी 69 को अव्यक्त हो गया। क्यों हो गया? हम सब जानते हैं, हमारे लिए हो गया। तो बाबा कहता है जब शिव बाबा अपना परम धाम छोड़कर, शिव बाबा को तो कोई सतयुग का सुख भी नहीं लेना है, बाबा कहता है ना जो बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं वो बिल्डिंग में रहते नहीं। आप देखेंगे मजदूर बिल्डिंग बनाएंगे, रहेगा दूसरा। हम सारे ब्राह्मणों को बाबा ने सतयुग बनाने के निमित्त बनाया, लेकिन खुद सतयुग में नहीं आता, हमको देता है। इसलिए अव्यक्त हो गए और कहते मैं 24 घंटे हर बच्चे को सहयोग देने की ऑफर करता हूँ, फिर अकेले क्यों हो जाते? इसलिए अगर आपको सूक्ष्म फरिश्ता का सचमुच अनुभव करना हो, आपको परम धाम का, जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ किसी को परम धाम का अनुभव होता ही नहीं, सारा कल्प। आप सतयुग में जाएंगे लेकिन जितनी आत्माएं परम धाम में होगी उसको पता नहीं होगा मेरे पड़ोस में कौन सी आत्मा बैठी है, कितना साइलेंस हो मैं। इस वक्त बाबा ने परम धाम की भी चाबी आपको दे दी, जब मर्जी परम धाम चले जाओ, जब मर्जी सूक्ष्म लोक चले जाओ, जब मर्जी सतयुग में चले जाओ, त्रेता में चले जाओ, चलो भक्ति मार्ग में चले जाओ। आपको किसने कहा है कि कलयुग में रहो, बताओ है? किसी को कहा जादूगर कहे कि मेरे सारे बंगले में बढ़िया बढ़िया जादू की चीजें, खोलना इस कमरे को नहीं खोलना, तो लोग को क्या करते हैं, फिर उसी को खोलते हैं। इसलिए हम कलयुग में कितना समय रहते हैं, हैं तो हम संगम पर, तो आपको पता है हम कलयुग में कितना समय रहते हैं। जब हम किसी चीज को भोग लगाए बिना खाते हैं, भोग लगाए बिना बनाते हैं, जब हम अमृत वेला मिस करते हैं, जब हम मुरली को मिस करते हैं, रात को बाबा को हिसाब देना मिस करते हैं, संसार की छोटी मोटी अट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तब हम कलयुग में हैं। अगर आपको लिस्ट चाहिए कि हमें छाप के लिस्ट दे दो भी कलयुग में हम कब तक रहते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं शास्त्रों में विश्वास नहीं करता, ना मैं कभी शास्त्र पढ़ के ज्ञान देता हूँ, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हुए हैं, ना हमारी बहनें कभी लिख के भाषण करती हैं और ना हमारे स्टूडेंट कोई कापियां भरते हैं, एक दिन का नोट ले लेते हैं। और आसान करना हो तो हम कलयुग में तब रहते हैं जब शरीर भान वाली मैं में रहते हैं, और हम अलौकिक तब रहते हैं जब हम आत्मा भान वाले मैं में रहते हैं, क्योंकि आत्मा भान वाले मैं में मेरा बदल जाता है, मैं आत्मा, मेरा परमात्मा, मेरा घर परम धाम, मेरी प्रॉपर्टी सतयुग, मेरे रिश्तेदार सारे ब्राह्मण, और शरीर वाला मैं लेंगे तो मैं बदल जाएगा। तो सारे दिन में इसलिए बाबा कहता है कि अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, अपने घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो, ये हमारा टॉपिक है। बस ये भी मुश्किल है कि चलते फिरते खाते पीते अपने को आत्मा समझो, अरे भाई हम हैं ही आत्मा, ठोक ठोक के पहले दिन हम आए थे तो यही ज्ञान मिला था तुम आत्मा हो, और जिनको मिला वही बाबा के बच्चे बनते हैं, पर बाबा कहते हैं लास्ट पेपर भी यही होगा कि मैं आत्मा हूँ। फर्क क्या हो जाएगा, पहले हमारी बुद्धि में था, अब हमारे जीवन में है कि मैंने निकलना है। मैं आत्मा वाला निकलेगा तो अमर लोक में जाएगा, मैं शरीर वाला निकलेगा तो मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेगा, सिंपल बात है। तो सार क्या हो गया, मैं आत्मा हूँ। आप बताओ, आप में से फिर हाथ उठवाते हैं, आप बताओ आप में से कौन कौन ये समझता है कि मैं शरीर हूँ, हाथ उठाओ। अच्छे भले शरीर हैं, हैं? अपने अपना कमरा बुक कराया, नाम लिखवाया, मेरा फलाना नाम है, फिर आप कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। अभी आप भोजन खाएंगे तो शरीर खाएगा या आत्मा खाएगी, शरीर खाएगा। डॉक्टर के जाएंगे तो शरीर को बुखार चढ़ा होगा या आत्मा को, फिर आप कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ। इसलिए भगवान कहता है यही मेरा जादू है कि हर ब्राह्मण को सो भी रहा होगा उसको कहो तू शरीर है, वो उठ के कहेगा मैं शरीर नहीं हूँ। इसलिए अब यो हाथ उठाओ जो समझते हैं सचमुच मैं आत्मा हूँ, सचमुच अच्छी तरह से, ठीक। जिन्होंने शरीर समझा तो उन्होंने हाथ ही नहीं उठाया, देखो। अच्छा, अब मैं हो गई आत्मा, अब इस आत्मा को सारा दिन कुछ नहीं करना, शरीर में रहो, सामने वाले का शरीर देखो, लेकिन शरीर में आत्मा मान के चलना है और सामने वाले को भी शरीर में आत्मा देखना है, ये तो कर सकते हो। इसलिए बाबा कहता है कि मैंने जो माला बनाई है रुंड माला, उसमें भाई बहन है, क्योंकि उसमें शरीरधारी पुरुष स्त्री हैं, परंतु अंदर में हम आत्मा हैं, तो भाई बहन में आत्मा ही आत्मा है। इसलिए बाबा कहता है कि इतना ही करना है कि दिनचर्या को फॉलो करो, अटेंशन रखो। अगर व्यक्ति मेरा सामान कोई लेना जाए, इसकी अटेंशन रख सकता है, तो ये नहीं अटेंशन रख सकता कि मेरी ज्ञान का धन कोई लेना जाए, और ज्ञान के धन में हम फालतू की बातें, जिसको बाबा ने सी नो इवल कहा है, हम इवल को ले आए साथ, तो ये तो बात हो गई। अब सबसे आसान तरीका क्या है अटेंशन रखने का? हम अटेंशन रखें और फिर ये भी भूल जाए कि हमने अटेंशन रखना, फिर क्या होगा? एक व्यक्ति को किसी ने कहा ये बात याद रखना, मार्केट जा रहे हो, ये सामान खरीदना, उसने कहा ठीक है। उसने कहा मैं गांठ बांध लेता हूँ, तो सचमुच उसने गांठ बांध ली कि मैंने सामान खरीदना है। जब मार्केट में गया, ये भी भूल गया कि मैंने किस चीज की गांठ बांध दी थी, हो गई छुट्टी। तो अगर हमें कोई कहे अटेंशन रखो और हम कहें हाँ रखना है, थोड़ी देर याद रहे, फिर ये भी भूल जाए कौन सा अटेंशन रखना है, फिर कहे नहीं नहीं अटेंशन रखना है, वो टेंशन हो जाता है, अटेंशन का टेंशन। इसलिए भगवान कहता है टेंशन वाला अटेंशन नहीं। तो बेस्ट तरीका क्या है? मान लो हम ऐसे बैठे हैं, अभी तो हम क्लास में बैठे हैं, ठीक ठाक बैठे हैं, कोई कहे यहां आकर वीडियो वाला कि आपकी सारी क्लास की हम वीडियो ले रहे हैं जो हर चैनल पे ब्रॉडकास्ट होगी, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे ही बैठे हो, कुछ चेंज करोगे कि नहीं? कोई अपनी टोपी ठीक करेगा, कोई ये क्यों भाई कि मेरा वीडियो जा रहा है। अच्छा, और अगर कोई कहे कि आपका फोटो लेना है, फोटो तो और भी पक्का है, कहीं ले दो पड़ा रहता है, तो हम कहेंगे अच्छा फोटो लेना, फिर ठीक है मैं और अटेंशन से बैठता हूँ। तो बाबा ने ज्ञान तो दे रखा है कि आपका ड्रामा रिपीट होता है, आप जो कुछ कर रहे हो वो रोल हो रहा है, ध्यान से करना। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है? मान लो हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास आके पीछे से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बैठ जाएं, वो तो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या होगा? आप मोदी जी को बैठा देख करके उसी तरह ठीक ठाक हो जाओगे जैसे वीडियो खिंचवा रहे हो, ठीक है? कोई भी आप कहेंगे अच्छा जी जानकी दादी मेरे पास बैठ जाए, चलो ब्रह्मा बाबा बैठ जाए, तो बाबा ने हमको ये भी गुप्त बताया हुआ कि अपने आप को कंबाइंड समझो, कंपेनियन भी नहीं, साथ वाली कुर्सी भी नहीं, हमारे साथ ही बाबा है। तो अगर हम अपने आप को हमारे साथ बाप दादा कंबाइंड है, वैसे तो कहते हैं ईश्वर मेरे साथ है, डरने की क्या बात है, लापरवाही, लेकिन ये हम करेंगे तो कंबाइंड बाप दादा हो गया, दिनचर्या बाबा ने बता दी ब्राह्मण की क्या है, साधारणता नहीं करनी है, हमें विशेषता रखनी है, तो बेड़ा पार। ओम शांति। Love.